कष्ट आदि से जड़ित हो गई हो तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो कपिल देव उनको कहते हैं कि संसार में यदि व्यक्ति भगवान के भक्तों के प्रति आपकी जो आसक्ति है, शुद्ध भक्तों के प्रति जो प्रेम की भावना है, उसको विकसित कर लेता है तो मोक्ष द्वारा अपार देता है, मोक्ष का जो द्वार है उसके लिए खुल जाता है। और वही आसक्ति संसारिक लोगों के प्रति हम रखते हैं तो नरक का द्वार हमारे लिए सदैव खुला रहता है। तो इसी कारण से प्रभुपाद कहा करते थे कि आसक्ति हमें विकसित करनी है तो भगवान के जो महान महान भक्त है उनके प्रति विकसित करनी चाहिए, जिसके द्वारा इस भौतिक जगत से हम सरलता से बाहर निकल सकते हैं। और उसी लिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं उनका अवतरण हुआ है। इसलिए प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर अपने श्लोक में अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करते हैं और वो कहते हैं नाराधितं कलियुगे तव पाद पद्मं, नालोकितं कलियुगे तव गौर देहं, नाकर्णितं कलियुगे तव तत्व गाथा, चैतन्य चंद्र भवता परिवंचितोऽहं। तो वो कहते हैं कि इस कलियुग में मैंने जन्म लेने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आराधना नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अंग कांति उनके दिव्य देह का दर्शन नहीं करता निरंतर, और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की जो तत्व गाथा है अपने कानों के माध्यम से हृदय में नहीं डालता, तो वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। और प्रभुदानंद कहते हैं कि मैंने धोखा खा लिया, मैं वंचित रह गया कलयुग में आने के बाद महाप्रभु और उनके भक्तों के बारे में अपने कानों के द्वारा मैंने गंभीरता से श्रवण आदि नहीं किया। इस प्रकार से वास्तव में यदि हम सरलता से भगवत अनुराग अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को समझना होगा, उनके पार्षदों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए तो चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतरण से पूर्व अपने भक्तों को अवतरित कर लिया। सची माता, जगन्नाथ मिश्र, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, ऐसे बहुत सारे भक्त अवतरित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का जो मिशन है उसको पूर्ण करने के लिए। कोई कहे महाप्रभु का क्या मिशन है, महाप्रभु का एक ही मिशन है। कृष्णदास कविराज कहते हैं चारि भाव भक्ति दिया नाचा भगवान, महाप्रभु का मिशन है सारे जगत के जीवों को चार प्रकार के भावों में भक्ति प्रदान करना और सबको कृष्ण कीर्तन में क्या करना, नचाना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और उसी मिशन की पूर्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के संग में चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य भक्त हैं, नित्य पार्षद गण हैं, वो अवतरित होते हैं। बल्कि महाप्रभु की कृपा देखेंगे ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही नजदीक सबको अवतरित करा दिया नवद्वीप मायापुर में। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने जानबूझकर अपने भक्तों को दूर दूर जगहों में अवतरित करवा दिया और ऐसे ऐसे स्थानों में जो सबसे अशुभ स्थान है जन्म लेने के लिए। कौन से स्थान अशुभ कहते हैं, जहां गंगा नहीं बहती, जहां पांडव नहीं गए या भगवान राम वनवास में गए तो उनके चरण स्पर्श नहीं हुआ, ऐसे स्थान क्या है, अशुभ है। तो ऐसे ऐसे स्थानों में भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा या वहां भक्तों को आविर्भूत कराया या उनको जन्म प्रदान किया। तो ऐसे महाप्रभु की कृपा है, दूर दूर देश में महाप्रभु के भक्त जन्म लिए लेकिन वो सारे महाप्रभु के पास आ गए। जिस प्रकार से अलग अलग नदियां दूर दूर से प्रवाहित होकर अंत में कहां मिलती है? समंदर में आकर मिलती है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे, लेकिन उनके भक्त अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए थे, लेकिन वो सब आकर कहां मिलते हैं? हाँ, नवद्वीप में आकर चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। और उन्हीं में से एक भक्त है लोकनाथ गोस्वामी। हाँ, लोकनाथ गोस्वामी के विशेष, बहुत विशेष डिवोटी है चैतन्य महाप्रभु के। ये लोकनाथ गोस्वामी का जो प्राकट्य है, आज बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट है जशोर, वहां तलमंडी नाम का एक स्थान है, वहां पद्मनाभ चक्रवर्ती और सीता देवी उनके माता पिता थे जिनके यहाँ उनका प्राकट्य हुआ था। तो लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही अत्यधिक स्कॉलर थे, और बचपन से ही उनका जो मन है निरंतर कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और भगवत चर्चा करने में निमग्न रहता था। तो जैसे जैसे वो बड़े हो गए, उनके माता पिता को इतना गर्व था कि बालक को तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन उनको एक डर भी लग रहा था, क्या ये संन्यास का ग्रहण करें? सबको एक ही चिंता है, कुले क्षुति भय, कई प्रकार के भय है। राजा भरतहरि अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, वो बेचारे भरतहरि ने पहले श्रृंगार शतक लिख दिया, फिर पहले तो नीति शतक लिख दिया, फिर इतने आसक्त हो गए अपनी जो भार्या है पिंगला से, फिर उसके सौंदर्य के बारे में फिर श्रृंगार शतक लिख दिया, 100 श्लोक, इतना सौंदर्य का वर्णन, और फिर उससे उग गए। भगवान ने इसकी योजना उनके लिए बनाई कि इतना वैराग्य आ गया कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। उसमें वो कहते हैं एक श्लोक में भय का वर्णन करते हैं, तो उसमें वो कहते हैं हर एक व्यक्ति भयभीत है, लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है उसको कोई भय नहीं है। एक भय क्या है किसी गृहस्थ व्यक्ति के लिए? कुले क्षुति भय, मतलब उसकी जो कुल परंपरा है, पुत्र आदि है, पिंडोदर क्रिया आदि जो कंटिन्यूअसली चलती है, वो एक चलनी चाहिए, इसलिए व्यक्ति सोचता है पुत्र प्राप्ति बहुत आवश्यक है। तो वैसे ही इनको लगा कि अब ये पुत्र हुआ है और ये संन्यास का ग्रहण करें, इसलिए उन्होंने सोचा कि जल्द ही इसकी शादी कर लेते हैं। किसी को बांध के रखना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? विवाह बंधन, वो बन ही जाता है। जैसे ये ढूंढने लगे नववधु, और जैसे इस घर में चर्चा करने लगे माता पिता कि लोकनाथ को आगे विवाह करना चाहिए, तो लोकनाथ को जैसे पता चला वो तुरंत भागने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने भी प्लान बनाया घर से कैसे भागा जाए। ऐसे हमारे बहुत आचार्य हैं, बहुत नजदीक महाप्रभु के बड़े भ्राता विश्वरूप, वो अद्वैत आचार्य के यहाँ जाकर बहुत शास्त्र अध्ययन करते थे, इतना विरक्ति आ गई। और जगन्नाथ मिश्र ने सोचा अभी बेटे की शादी करनी होगी, घर में सबसे बड़ा है। और फिर जैसे विश्वरूप को पता चला, दूसरे दिन भाग गए, संन्यास लिया और शंकर अरण्य बने। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं जिनका नाम है रामदास। रामदास भगवान राम के भक्त थे वो रामदास। अभी उनके माता पिता ने जब उनके विवाह के बारे में सोचा, पूरा विवाह मंडप में खड़ा कर दिया। और महाराष्ट्र में जब विवाह कराते हैं तो पति पत्नी को ऐसे खड़ा करते हैं, यज्ञ आदि तो नहीं करते, जहां इधर करते ट्रेडिशनली, तो इधर पत्नी को, युवती को, इधर युवक को खड़ा करके सब कुछ बांधा रहता है उनके सर पे, और फिर बीच में कपड़ा पकड़ते हैं ऐसे बॉर्डर लाइन तटस्थ शक्ति जैसे ऐसे कपड़ा डालते हैं, वो लड़की उधर लड़का इधर। अभी जितने भी लोग आते हैं विवाह में उनके हाथ में अक्षता होती है, जो चावल है वो सब होते हैं, और एक विशेष सॉन्ग गाया जाता है, उसी सॉन्ग का जो ट्यून है डिवोटीज ने शिक्षा सुतम के लिए गाते हैं वो ना डिवोटीज तो वो विशेष सॉन्ग गाते हैं, और उस सॉन्ग की आखिरी लाइन, हर लाइन है वो उच्चारण होती है, जैसे हम कहते हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वैसे वो जो सॉन्ग होता है जब कंप्लीट होगा 8 श्लोक लाइन तो विवाह हो गया, तो उसमें एक लाइन आती है हर उसमें आखिरी उसका वर्ड आता है शुभ मंगल सावधान, मतलब ये शुभ मंगल हो रहा है लेकिन उसके क्या वर्ण आता है सावधान। अभी ये जो रामदास के भक्त, राम के भक्त थे रामदास, ये अभी इनका विवाह में खुद खड़े हैं और ये वर्डिंग जब गाई जा रही है और जैसे ये शुभ मंगल सावधान वर्ड यूज होता है, जब हर कोई व्यक्ति जैसे पुष्पांजलि में 3 बार पुष्प अर्पित करते ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा वो अक्षर का रखना होता है बीच बीच में डालने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुना शुभ मंगल सावधान, इनका दिमाग घूम गया, उन्होंने तो कहां फंस रहा हूं मैं, अभी 8 श्लोक खत्म होने से पहले मुझे भागना चाहिए यहां से। वो जैसे सावधान शब्द सुना वो मंडपम से भाग गए उस वस्त्र में और निकल गए और फिर महान साधु बने वो शिवाजी, किंग शिवाजी बने, उनको भी उन्होंने गाइड किया और अलग अलग चर्चाएं आती हैं। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जहां विवाह का नाम सुनते ही कई सारे युवक जो भगवत सेवा में लगे थे वो भाग जाते हैं। उनमें से कौन थे, लोकनाथ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा माता पिता इतना सोच रहे हैं तो मुझे भागना होगा, उनके हृदय में इतना वैराग्य बढ़ गया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों का स्मरण अत्यधिक हो रहा था उन्हें। और फिर एक दिन कार्तिक का महीना आया जिसमें कार्तिक की ऐसी रात्र आई जिस दिन वो वहां से भाग पड़े और 16 मील वहां से वो दौड़े रात्रि को और आके फाइनली पहुंचते कहा नवद्वीप में। और नवद्वीप में ये चैतन्य महाप्रभु को पर्सनली जानते थे थोड़ा बचपन में हिमालय पंडित के रूप में, अभी ये युवक ही थे। और महाप्रभु गया से दीक्षा लेकर वापस नवद्वीप में आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु गंगादास पंडित के यहाँ टीचिंग ले रहे थे और लोकनाथ गोस्वामी अपने ये युवा अवस्था में उनसे शिक्षा ले रहे थे। अद्वैत आचार्य से श्रीमद् भागवतम उन्होंने अध्ययन किया था अद्वैत आचार्य से। तो ऐसे जब ये नवद्वीप पहुंचे तो इनको पता नहीं था कि महाप्रभु को कहाँ ढूंढो, कहाँ मिलो चैतन्य महाप्रभु को। तो ऐसे नवद्वीप में भ्रमण करते करते पहुंचते हैं और एक स्थान में जहाँ देखा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं गदाधर पंडित के साथ और मुकुंद के साथ ऊंचे स्थान पर, और ये जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने। अभी चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने देखा, चैतन्य महाप्रभु का इतना अद्भुत सौंदर्य था, उनको प्रणाम आदि किया और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। अभी सोचा कि क्या इंट्रोडक्शन दो अपना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे लोकनाथ को देखा चैतन्य महाप्रभु पहचान गए और चैतन्य महाप्रभु खड़े हो गए। उठते ही चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी का आलिंगन किया और कहा कि तुम इतने समय तक कहाँ थे, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तो लोकनाथ गोस्वामी उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, महाप्रभु भी रोने लगे, दोनों रो रहे थे। इससे पता चलता है कि भगवान चैतन्य कितना अधिक हमसे प्रेम रखते हैं, क्योंकि इस संसार में हम अपने जीवन में हमेशा एक ऐसे लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो अपने प्राण से भी अधिक हमसे प्रेम करे, और हम भी अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं जिसको सारे हमारे इमोशंस और प्रेम से हम नहलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि प्रेम की केवल एक भी विषय है तो वो केवल कौन है, कृष्ण है, जिनसे ब्रजवासीगण अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। तो ऐसे महाप्रभु ने जब उनका आलिंगन किया तो लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं और उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं तोमा है न रत्न आमी देखी ले नयने, कि आपके समान रत्न, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारे जैसे रत्न को मैंने देखा है। डिवोटिस की तुलना किससे की गई है, अमूल्य रत्न से। उसी को नरोत्तमदास ठाकुर अपने गीत में कहते हैं ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद, कि जो वैष्णव है वो पृथ्वी की असली संपदा है, पृथ्वी को सबसे अधिक आनंद कब होता है? जब इस भूतल पर किसी महान वैष्णव का आविर्भाव होता है। और पृथ्वी देवी सबसे अधिक दुखी कब होती है? जब इस पृथ्वी से किसी कोई वैष्णव अप्रकट हो जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर अप्रकट हुए हैं तो महाप्रभु ने कहा रत्न शून्य मेलिनी कि आज जो पृथ्वी है एक रत्न से क्या हो गई है? शून्य हो गई है। इतना मूल्यवान है भक्त। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की खासियत क्या है? महाप्रभु ट्रैवल भी करते हैं तो वो रत्न चुनने के लिए साउथ इंडिया में तो वहां से दो रत्न लेके आए हैं। कौन से? दो बुक्स और दो डिपोटी। एक थे रामानंद राय, दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी। और जब वो वृंदावन जाने का बहाना बनाया पहली यात्रा तो वो राम के लिए गए, वहां से दो रत्न ढूंढ के लाए। कौन थे वो? रूप सनातन। तो महाप्रभु अपने मिशन के लिए अलग अलग रत्न लाते अलग अलग स्थानों से और उनको लगाते हैं इस मिशन की सेवा में। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इनसे मिलते हैं और लोकनाथ गोस्वामी अत्यधिक आनंदित होते हैं जब गदाधर पंडित आदि से वो निरंतर कृष्ण कथा आदि में निमग्न रहते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी आदित्य आचार्य से भी मिलते हैं, नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं और लगातार 5 दिनों के लिए कृष्ण कथा में वो निमग्न रहते हैं और कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी के पास आते हैं और पूछते हैं लोकनाथ तुम इतने दूर आए कैसे हो? तो जो पूरा अपना बैकग्राउंड हिस्ट्री था लोकनाथ गोस्वामी ने नरेट कर दिया। मैं घर मेरे घर वाले तैयारी कर ही रहे थे तो मैं भाग आया क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतनी अधिक आसक्ति थी उनके हृदय में कि जिसके कारण वो घर छोड़कर भाग गए। घर से भागना कोई सरल कार्य नहीं है, उसके लिए हृदय में आसक्ति चाहिए। जैसे विलोम अमृत ठाकुर भी भागे थे, किस कारण से भागे थे? उसकी चिंतामणि के लिए आसक्ति थी। रघुनाथ दास गोस्वामी भी भागे, महाप्रभु के लिए आसक्ति थी। लोकनाथ गोस्वामी भी भागे, महाप्रभु के लिए हृदय में आसक्ति थी। नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन आता है, राजकुमार थे, वो भी अपना घर छोड़कर भाग पड़े। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के लिए उनके हृदय में इतनी अधिक गहरी आसक्ति थी जिसके कारण वो चैतन्य महाप्रभु के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी को एक दिन सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु ने बिठाया और उनको ये सारी चीजें पूछी। और फिर लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य देव, मेरे जीवन का कोई असली धन है, ट्रेजर है तो वो आपके चरण कमल है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांग दुटी पद जार धन संपद, कि वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है जिस व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल ही एक में वो अपना क्या बना लिया है? धन बना लिया है। हाँ, तो इस प्रकार से महाप्रभु के प्रति वो अपना आकर अपना जो आसक्ति है या प्रेम है उसका वर्णन कर ही रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बात करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मैं भौतिक संसार से छोटा हूं, वो केवल आपकी कृपा रूपी रज्जु के कारण, कृपा रूपी डोर मुझे खींच के यहाँ आपके चरणों में लाया है जिसके कारण मैं यहाँ आया हूँ। जिस प्रकार से रूप और सनातन भी महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण की कृपा हुई है जिसके कारण आप आ गए हो भाग इस गंदे नाले से। रूप सनातन कहते हैं आमी कृष्ण नाही जानी, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर किसकी कृपा हुई है, आपकी चैतन्य देव की कृपा हुई है। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी भी अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में श्रील प्रभुपाद की कृपा देखनी चाहिए, वर्तमान आचार्य की कृपा को देखना चाहिए और कृतज्ञता का जो भाव है वो हमारे हृदय से प्रकट होना चाहिए। तो ऐसे महाप्रभु उनको बिठाते हैं एक दिन और चैतन्य महाप्रभु फिर उनको कुछ कहने लगते हैं। तो वर्णन आता है, करे धरि कहे ओहे सुन लोकनाथ, मने जहि दुख उठे कहि बकहा। फिर महाप्रभु रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु पहली बार किसी भक्त के पास रो रहे हैं और पहली बार अपने हृदय का जो दुख है वो व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, क्या दुख था महाप्रभु के पास? चैतन्य महाप्रभु ने हाथ पकड़ा लोकनाथ का, कहते हैं मेरे हृदय में बहुत अधिक दुख उठ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपना जो दुख है मैं किसको जाकर कहूं। ऐसे भक्तों के साथ भी होता है, इसलिए हमारे पास कोई भक्त होना चाहिए जिसके पास जाकर हम अपना सारा दुख बयान करें। हाँ, कृष्ण के पास कोई नहीं था। भगवान कृष्ण जब ब्रज छोड़ा और मथुरा आए तो वो रोने लगे, रोज रोते थे, कोई उनके पास नहीं था, लेकिन एक भक्त उनको मिला। सेम इसी प्रकार से और ऐसे ही हुआ, जैसे महाप्रभु ने लोकनाथ का हाथ पकड़ के बोला मेरे हृदय में बहुत दुख है अभी मैं बताने जा रहा हूं, वैसे ही कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर जब द्वारका मथुरा आए तो उन्होंने उद्धव का हाथ पकड़ा और उद्धव को कहा, उद्धव मोहे ब्रज विसरत ना, ये मेरा दुख है, हे उद्धव मैं किसको नहीं भूल पा रहा हूं, वृंदावन को नहीं भूल पा रहा हूं। तो वैसे लोकनाथ गोस्वामी के पास चैतन्य महाप्रभु अपना दुख बताते हैं और दुख क्या था उनका, वो कहते हैं कि मेरा यही दुख है, मोर मन अनुभव कहि बकाय, मोरे देखी के हनते केहे नासी जाय। मैं देखता हूं कि कुछ लोग मुझे देखकर मेरी निंदा करते हैं और कुछ लोग मुझे देखकर मुझ पर हंसते हैं। अब ये महाप्रभु का दुख था। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राधिका भावया अयनु गौड़ देशे आस्वादन नहे दुख आशीष विशेषे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं राधा रानी का भाव धारण करके जगत में आया और आकर मैं राधा रानी का जो भाव आदि है उसका आस्वादन करना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अमर लगिया राधा जाति कुलित कुल धाम सकल छाड़िया आत्मा कैल समर्पण। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है उसका उच्चारण करते हुए कहने लगे कि मेरे लिए श्रीमती राधा रानी ने अपना जाति कुल धन आदि छोड़ा है और अपना जीवन और आत्मा है मुझे समर्पण किया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है नवद्वीप में सर्वप्रथम लोकनाथ गोस्वामी को वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो रूप है, गुण है, मेरी जो दिव्य कार्यकलाप है उसके बारे में श्रीमती राधा रानी सदैव विचार करती रहती है और सदैव उसमें मग्न रहती है, बल्कि मेरे विरह में श्रीमती राधा रानी का जो देह है वो एक मृणाल तंतु के समान इतना पतला हो गया है और मानो मेरे विरह में वो एक पागल व्यक्ति के भांति वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं, उनके वस्त्र आदि भी मलिन हो गए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये सारी चीजें उनको कह रहे थे लोकनाथ गोस्वामी को और लोकनाथ गोस्वामी को कहते हैं इसी कारण से राधा रानी के इस विरह के कारण से उनके इतने दिव्य प्रेम मेरे प्रति है, उसी कारण से मैंने संन्यास ग्रहण किया है और ये संन्यास मैं इसलिए ग्रहण किया हूँ ताकि मैं राधा रानी का जो भाव है और उनकी जो सेवा का भावना है उसको समझ सकूं। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास और भी विस्तार से वो ये सारी चीजें बताते हैं, विशेष रूप से राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो ये जब लोकनाथ गोस्वामी सुन रहे थे तो लोकनाथ गोस्वामी समझ रहे थे कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक ब्राह्मण है नवद्वीप में जो क्या करता है, मेरे पास आता है और मेरी निंदा करता है और इतना ही नहीं उसने बहुत सारे अपराध भी किए हैं जिसके कारण मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। ताकि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा तो उनके ऊपर अपनी कृपा का प्रदर्शन करूंगा। हाँ, लेकिन वो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने के बावजूद भी दिन में पूजा अर्चना करता है और रात में शराब आदि पीता है, महाप्रभु कहते हैं मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे पतित से पतित जीवों के कल्याण के लिए मैं संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ और जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को ये सारी चर्चाएं बता रहे थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी को लगा कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे तो वो बहुत दुखी होंगे, और बल्कि उन्होंने अपना घर छोड़ा था। किस लिए छोड़ा था? कि निरंतर मैं चैतन्य महाप्रभु के संग में रहूंगा। लेकिन फिर दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को मिलते हैं और मिलकर उनको कहते हैं कि लोकनाथ तुम्हारे लिए मेरे पास एक विशेष विशेष सेवा है। लोकनाथ गोस्वामी अपने हाथ जोड़कर महाप्रभु के सामने खड़े थे और लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, प्रभु क्या सेवा कर सकता हूँ? कहते हैं, आज ही तुम मुझे छोड़कर वृंदावन चले जाना। अभी उनको लगा कि मेरे ऊपर वज्रपात हो रहा है। जिस व्यक्ति के लिए मैं घर छोड़ के आया, जिसके संग में रहने की कामना थी, वही व्यक्ति मुझे कहाँ भेज रहा है? अपने से दूर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण को वृंदावन बहुत प्रिय है, और जो वृंदावन कृष्ण को इतना प्रिय है अपने प्राणों से भी अधिक, इसलिए कृष्ण सोचते हैं कि मेरी सेवा से भी बढ़कर मेरे धाम की सेवा है। हाँ, ऐसी कृष्ण की भावना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे लोकनाथ तुम क्या करो, वृंदावन चले जाओ और भगवान की जो लीला स्थलियां हैं उनको उजागर करो। तो आज तक वृंदावन में कोई नहीं गया था। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले किसी अपने भक्त को भेजा था वृंदावन की सेवा करने के लिए, वृंदावन को उजागर करने के लिए, तो वो लोकनाथ गोस्वामी है, रूप सनातन से भी सर्वप्रथम। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु यदि ऐसा चाहते हैं हाँ तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो जान गए वपु सेवा से भी कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, वाणी सेवा, वाणी को सर्व करना वपु से भी सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए इष्ट को ही त्याग देना, ये उन पर बीती थी। उनके इष्ट देव कौन थे? महाप्रभु। उनकी सेवा के लिए उनको ही त्यागना पड़ रहा था, और जिसके कारण तो वृंदावन जाना पड़ रहा था और वहां जाकर सेवा करने का अवसर उनको मिला था। बल्कि वो जानते थे कि वृंदावन में करुलता भी इतनी शक्ति संपन्न है, किसी भी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रदान कर सकती है। तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी है वो सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु यदि इसमें प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता में ही क्या है, मेरी प्रसन्नता है। यही बात चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज राधा रानी के उद्गार को संबोधित करते हुए कहते हैं। एक श्लोक में श्रीमती राधा रानी कहती हैं, मोरे दिया दुख तार पाय जलिसो सेई दुख मोर सुख वरजा। मतलब मोरे दिया दुख तार पाय जलिसो, यदि कृष्ण को मुझे दुख देकर आनंद आता है तो मैं आनंदित हूँ। उसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आश्लिष्टवा पादरतां विनष्टवान। महाप्रभु कहते हैं कि चाहे आप मुझे आलिंगन करें या लात मारकर भगा दे, लेकिन कृष्णा आप मेरे सदैव क्या रहेंगे, प्राणनाम। तो उसी प्रकार से ये सर्वोच्च भावना है भगवत सेवा में, जिसमें भक्तिरूप ठाकुर कहते हैं, जाय है कृष्ण इच्छा ताहाई करिबो, कि जो कृष्ण की इच्छा है, जो गुरु की इच्छा है, आचार्य की इच्छा है, मुझे अच्छा लगे या ना लगे मैं क्या करूंगा, वही कार्य करूंगा,
क्योंकि उसी में ही मेरा लाभ है। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी तैयार हो जाते जाने के लिए, तो उनके बहुत ही क्लोज भक्त थे। होते ना कोई दो भक्त एक साथ होते हैं, एक को किसी दूसरे टेम्पल भेजा तो कहते मुझे भी उनके साथ जाना है। तो ऐसे इनके प्रिय भक्त थे, मित्र कौन थे? भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित के शिष्य थे। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी सदैव कृष्ण कथा आदि में मग्न रहते थे। तो वहां भूगर्भ गोस्वामी महाप्रभु चैतन्य को कहते हैं कि लोकनाथ वृंदावन जा रहे तो मुझे भी वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं तुम्हारा अथॉरिटी नहीं हूं, हाँ तुम्हें अपने अथॉरिटी को जाकर पूछना पड़ेगा। उनके अथॉरिटी कौन थे? गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित के पास जाते हैं भूगर्भ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी उनको परमिशन देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर पहली बार चैतन्य महाप्रभु के ये दो भक्त ब्रज में जा रहे थे विशेष सेवा करने के लिए, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी खासियत है, उनका नाम ही इसलिए पड़ा है भूगर्भ। भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर गड्ढे के नीचे जाकर गुफा में जाके भजन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जब वृंदावन आते हैं तो वृंदावन आकर वो सर्वप्रथम वृंदा देवी की प्रार्थना करते हैं ब्रज में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु ने सेवा दी थी कि खुद भजन करना और दूसरा लीला स्थलियों का खोज करना। तो चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को पूर्ति करने के लिए वो आते हैं और वृंदा देवी की सहायता लेने के लिए उनसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं। तो ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में भ्रमण करते करते ब्रज का एक स्थान है छत्रवन या उमराव ग्राम, वहां आते हैं। वहां आकर एक कुंड था किशोरी कुंड, उस किशोरी कुंड के नजदीक वो बैठते हैं और उनके हृदय में इतनी बड़ी लालसा जागृत होती है कि मेरे पास एक विग्रह चाहिए जिनकी मैं सेवा कर सकूं। और उसी किशोरी कुंड वो तमाल वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठे थे, और वो जो किशोरी कुंड था उसके अंदर भगवान कृष्ण भी इतने विग्रह रूप में थे, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कौन भक्त आएगा मुझे बाहर निकालेगा और मेरी सेवा करेगा। तो ये लोकनाथ गोस्वामी को जैसे देखा, क्योंकि कृष्ण पहचान गए ये तो मेरे प्रिय सखी हैं मंजुलादी। हाँ लोकनाथ गोस्वामी अपने आध्यात्मिक रूप में कौन है? मंजुलादी सखी। तो ऐसे वहां कृष्ण कुंड में उनके बारे में सोच रहे हैं और ये भगवान के बारे में विग्रह के बारे में सोच रहे हैं। तो भगवान कृष्ण एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करते हैं और स्वयं अपने आप को बाहर लेके आते हैं विग्रह को। विग्रह कौन से थे? राधा विनोद। तो राधा विनोद को विनोदीलाल जिनको कहते हैं, तो उस विग्रह को लेकर वो वृद्ध व्यक्ति लोकनाथ गोस्वामी के पास आया और उनको कहा मैं तो इनकी सेवा लंबे दिनों से कर रहा था, कई सालों से, अभी मैं वृद्ध हो गया इनकी सेवा में नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या करो इनकी सेवा करो कंटिन्यूअसली। तो उनके पास उनको देते और वृद्ध व्यक्ति चला जाता है। जब भगवान के उस विग्रह को देखते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं कि मैंने केवल सोचा ही था अभी और भगवान साक्षात मेरे लिए विग्रह रूप में आ गए मुझसे सेवा लेने के लिए। तो ये सोच रहे थे तो भगवान फिर बोलने लगे विनोदीलाल। विनोदीलाल कहते हैं वो व्यक्ति देखे नहीं गया है, मैं खुद ही आया हूं तुम्हारे पास, और उठो मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ, मेरे लिए कुछ खिलाओ। तो इनके पास तो कुछ नहीं था। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मैं वनचारी हूं, तुम्हें भी मेरे जैसे वनचारी बनके रहना होगा, मैं जल पीकर फल फूल खाकर रहता हूं, तुम्हें भी यही स्वीकार करना होगा। तो भगवान तो उनके प्रेम के भूखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उनकी सेवा करना कंटिन्यूस रखा और फिर उन्होंने उनके लिए अल्टर बनाया। अल्टर कहा था उनका छाती में एक झोला या कपड़ा लोकनाथ गोस्वामी ने टांग दिया है, जैसे जपमाला टांगते हैं वैसे वो एक कपड़ा टांग दिया और उसके अंदर विनोदीलाल इतने छोटे विग्रह हैं उनको रखा। और जहां जहां लोकनाथ गोस्वामी जाते थे, क्योंकि दिन भर वो सेवा करते थे और महाप्रभु ने उनको सेवा दी थी, और क्या सेवा की, कृष्ण की लीला स्थलियों को ब्रज में ढूंढकर निकालना। भगवान आप प्रकट हो गए तो वृंदावन वृंदावन नहीं रहा, सारा जंगल बन गया था। तो ये विग्रह को यहाँ रखते थे, भगवान विनोदीलाल को इतना आनंद होता था। क्या आनंद था कि लोकनाथ गोस्वामी के जो हृदय है उसको सट कर बैठते थे और ऐसे हिलते रहते, थोड़ा सा टच करते रहते थे सटे हुए हृदय को, और भगवान ऐसे छोंकते रहते थे और उनको गाइड करते थे, लोकनाथ इधर चलो, इधर मैंने लीला की थी द्वापर में जब गोपियों के संग में, यहाँ मैंने ये लीला की थी, यहाँ मैंने ये लीला की थी। इसलिए एक महान आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य है, उन्होंने ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ लिखा है, उसको वर्णन आया है कि लोकनाथ गोस्वामी ने ब्रज में 333 वन ढूंढ के निकाले हैं और कई सारे लीला स्थलिया। तो ऐसा विशेष जो सेवा है भगवान विनोदीलाल जी को करते थे। और फिर जब बारिश होता था तो बारिश में जो पेड़ था उसके अंदर एक बड़ा सा ऐसा छेद बनाकर विग्रह को वहां रखते थे और बारिश में खूब दिन भर ऐसे खड़े रहते थे। तो ऐसा समर्पण और सेवा की भावना थी विनोदीलाल के प्रति, और लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत विनम्र थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को एक ही गुण आकर्षित करता है और वो कौन सा है, त्रिनादपि समीचीनं, विनम्रता का जो भाव है, जो रूप सनातन सारे वैष्णव आचार्य ने प्रकट किया है। श्रील प्रभुपाद का भी हम गुण देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भक्ति नाही ज्ञान नाही नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम तुम्हें सार्थक करो। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे एक पोयम लिखा, उन्होंने कहा मुझमें ना भक्ति है ना ज्ञान है, मेरा नाम तो भक्ति वेदांत रखा है लेकिन ये दोनों चीजें मुझमें नहीं है, हे कृष्णा आप मुझे क्या करो, इस नाम को सार्थक करो, लेकिन एक चीज मुझमें है, आपका ये जो पवित्र नाम है इसको मैंने बहुत जम के पकड़ा है। प्रभुपाद लिखते उस पोयम में, नामे खूब डरो, हम तो खूब अच्छे से पकड़ के रखा है आपके नाम को। तो उसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी की विनम्रता का भाव हम देखते हैं। पहला उदाहरण है कि जब कृष्णदास कविराज आए थे उनके पास कि मैं चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ, हाँ तो आप आशीर्वाद दीजिए मुझे ताकि ये जो ग्रंथ है पूरा हो सके। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा पूरा मेरा सहयोग सपोर्ट और आशीर्वाद है, लेकिन एक चीज है, उस ग्रंथ में मेरा नाम मेरा चित्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बल्कि कलयुग में तो एक ही श्रेष्ठ है, कले काले नाम रूपे कृष्णा अवतार, कलयुग में केवल नाम ही है, या तो अपना नाम या तो कृष्ण का नाम, दोनों में से एक को हम पकड़ के रखते हैं अंतिम समय तक। तो यहाँ लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितमृत में मेरा बिल्कुल वर्णन नहीं होना चाहिए, और उन्होंने वर्णन नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा मैं कोई शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा, उनकी प्रतिज्ञा थी, बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हें एक भक्त को तो दीक्षा देनी पड़ेगी, एक भक्त मैं भेजूंगा आपके पास जो ऐसा भक्त होगा जब वो कीर्तन करेगा तो पत्थर और जो लकड़ है वो भी पिघल जाएंगे, और वो भक्त कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी ब्रज में रहे, और एक बार कि नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं उनके चरणों में और उनसे याचना करते हैं कि आप उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं मुझमें बिल्कुल योग्यता नहीं है, मैं नीच आदम हूँ, आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने ठान लिया किसी वैष्णव का आश्रय लूंगा, किसी से दीक्षा लूंगा तो किससे लूंगा, लोकनाथ गोस्वामी से। हाँ, तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी प्रतिदिन सुबह सुबह अपने शौच प्रत्यादि करने के लिए जाते थे जंगल में, तो ये लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर जो राजपुत्र थे वो झाड़ू लेते थे और जहाँ ये शौच आदि करते थे उस स्थान को रोज साफ करते थे, वहां फ्रेश मिट्टी आदि रखते थे और वो झाड़ू को अपने छाती में, प्रेम विलास का वर्णन आया है, झाड़ू को छाती में लगाकर रोया करते थे नरोत्तम दास ठाकुर और कहा करते थे, हे लोकनाथ कब आप मेरे ऊपर कृपा का वर्षाव करेंगे। ये लोकनाथ जो सामने देखा कि प्रतिदिन जहां मैं शौच क्रिया करने जाता हूं उस स्थान को कौन इतना साफ सुथरा करके रखता है, तो एक दिन झाड़ियों में छुप गए, देखा वहां कौन है, नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ तो उनको वो स्वीकार करते हैं, एक ही व्यक्ति को शिष्य बनाते हैं और यही लोकनाथ गोस्वामी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर आचार्य का महाप्रभु के आंदोलन में क्या है, कंट्रीब्यूशन है विशेष। हाँ तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक महान रत्न प्रदान किए जो कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने हजारों हजारों शिष्य बनाए और सारे जगत को उन्होंने कृष्ण भावना प्रदान की। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के एक महान शिष्य हुए हैं और लोकनाथ गोस्वामी अपने विग्रह से बहुत प्रीति रखते थे। एक बार लोकनाथ गोस्वामी विनोदी लाल की सेवा उन्होंने की, श्रृंगार आदि किया और श्रृंगार आदि करके बाहर आ गए, सामने आ गए और बैठ गए, अपने ड्यूटीज को ऐसे निरंतर देख रहे थे और अश्रुपात हो रहा था और वो भूल ही गए कि ड्यूटी किचन में जाकर मुझे उनके लिए भोग भी बनाना है। तो भगवान सोचने लगे कि इतना मेरे प्रेम में विवल है, आंसुओं की धारा उसके नेत्र से बह रही है और अभी मेरे भोग का समय भी हो गया है। भगवान ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, भगवान स्वयं आल्टर से चले गए, कहा किचन में लोकनाथ को समय का रूप धारण कर लिया, स्वयं के लिए कुकिंग कर रहे थे और कुकिंग कर दिया, कंप्लीट हो गया। तब लोकनाथ को समय का एक सेवक आके देखता है, अरे किचन में एक लोकनाथ जी है और फिर टेम्पल हॉल में आए तो यहाँ भी कौन है, लोकनाथ जी कन्फ्यूज हो गया कौन से हैं, फिर किचन में गया तो किचन के तो गायब हो गए लोकनाथ जी। हाँ तो लोकनाथ गोस्वामी हाँ फिर समझ गए, आपके किचन में देखते, अरे मैंने तो आज विनोदी लाल के लिए भोगा बनाया नहीं, तो वो गए किचन में तो देखा कि सब प्रकार के भोग बने हुए हैं, तो वो समझ गए हाँ कि वास्तव में भगवान ने अपना भोगा जो है बना लिया है। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी के प्रति भगवान कृष्ण का, विनोदी लाल का अत्यंत प्रेम था और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु, हाँ चैतन्य महाप्रभु का विशेष विशेष प्रेम था, बल्कि लोकनाथ गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु को केवल एक ही बार मिले हैं। लोकनाथ गोस्वामी तभी मिले कि वृंदावन भेज दिया उनको और वृंदावन आने के बाद उनके हृदय में यही इच्छा थी कि कब मैं महाप्रभु को मिलूंगा, तो उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं, तो ये वृंदावन से भूगर्भ गोस्वामी को लेकर दक्षिण भारत गए। अभी उस समय तो कोई फ्लाइट या ट्रेन नहीं था कि तुरंत पहुंच गए, ये जब तक साउथ इंडिया चल चल के पहुंच रहे हैं, महाप्रभु का साउथ इंडिया टूर खत्म होके वो वृंदावन आ गए थे और ये वापस जब वृंदावन आए साउथ पहुंचे तो कहा कि महाप्रभु पूरी वापस गए हैं। फिर ये साउथ से चलते हुए फिर वृंदावन आए तो यहाँ आकर गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि ने कहा, हाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, दूसरे आचार्य ने उस समय तो आए नहीं थे कोई, तो डिवोटीज ने कहा, सुबुद्धि राय थे, एक वैष्णव थे सुबुद्धि राय, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु अभी अभी वृंदावन से वापस चले गए। लोकनाथ गोस्वामी हम फिर वहां से निकल पड़े कि अभी इलाहाबाद तक पकड़ लूंगा उनको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बहुत दूर चला गया हूँ। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी का बहुत अधिक महाप्रभु के प्रति प्रेम था और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए ब्रज में निवास किया, जिनके लिए भगवान विनोदी लाल प्रकट होते हैं। और जब लोकनाथ गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि इस संसार से अप्रकट हो गए, उन्होंने देखा रूप सनातन भी चले गए, रघुनाथ दास भी चले गए, तो उनको बहुत विरह हो गया। उस विरह को वो झेल नहीं पाए। वहां से वो राधाकुंड के तट पर जाते हैं और वहां एकांत भजन करने लगते हैं। और फिर हम जानते हैं कि आज के दिन ऐसे महान आचार्य ने क्या किया, अपना जो श्रद्धेय है त्यागा, भगवान की जो नित्य लीला है उनमें वो प्रविष्ट हो गए। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी से हमें याचना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा में उनका अनुराग था और अपने सुख को नहीं देखा। भगवत भक्ति क्या है कि भक्त एक ही शब्द में भक्ति की व्याख्या करते जीव गोस्वामी। वो कहते एक ही शब्द काफी है, उसका उस पर चले तो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो सकता है। और वो क्या है, कृष्ण सेवार्थ कृष्ण सुखार्थ भजन, कृष्ण के सुख के लिए भजन, बस एक ही शब्द कहते जीव गोस्वामी। इसी में सारे भगवत भक्त सारे शास्त्रों का क्या है, निचोड़ है। इसी में हमारे जीवन का यही एक साधक का अस्तित्व होना चाहिए, जैसा ये लोकनाथ गोस्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे लिए आदर्श अभी के उदाहरण है कि कृष्ण और उनके आध्यात्मिक गुरु के सुख के लिए उनका जीवन है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तुम्हार सेवाय गुरु का हय जर सहित परम सुख। हम भक्त कहता है कि हे कृष्णा आपकी सेवा में जितना भी दुख आता है वो दुख महसूस नहीं होता है, वो दुख वास्तव में क्या है, सुख ही है। तो इसलिए इन आचार्यों का स्मरण करना, इन आचार्यों के बारे में सुनना, इन आचार्यों के चर्चा करना, वो भगवत भक्ति में हमें बल देता है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे जब आचार्यों का हम चरित्र वर्णन करते हैं तो उससे हमारे हृदय में एक गुण विकसित होता है और वो है डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। हाँ, ये दृढ़ता का भाव हमारे अंदर आता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिले महान वैष्णव का गुणगान करना चाहिए, भक्तों की प्रशंसा करनी चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर कहते मैं उस व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहता जो व्यक्ति भक्तों के वैष्णव से हिंसा करता है और जय हिंसा निंदे और वैष्णव की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति का मैं मुख कदापि नहीं देखना चाहता, ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर कहा करते थे। और वो कहते थे